अब यहाँ क्यों आए तुम? जाओ जाकर अपना काम करो। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई काम कहाँ? कायरव दिलकशी से मुस्कुराया और उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। इनाया जो झूठ मूठ की नाराजगी दिखा रही थी, यहाँ वो नाराजगी भी पिघल गई। कायरव ने उसके कंधे को थामकर उसे सीधा लिटाया और खुद उसके सर के दोनों तरफ हथेली रखकर उसके ऊपर आ गया। कायरव, ये तुम क्या कर रहे? इनाया आंखें बड़ी बड़ी किए हैरान परेशान से उसे देख रही थी। कायरव मिस्टीरियस अंदाज में मुस्कुराया। आज तुम्हारे वजह से मुझे इतनी सारी ऑयली चीजें खानी पड़ी, इसलिए अब थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ऐसे कौन सी एक्सरसाइज होती है? करनी है तो जिम में जाकर करो, मेरे ऊपर क्यों चढ़े हुए हो? ये वाली एक्सरसाइज जरा स्पेशल है, ऐसी ही होती है। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज है जरा मुझे भी तो बताओ, इनाया ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। कायरव के होठों पर कातिलाना मुस्कान उभरी और आंखें शरारत से चमक उठी। कायरव इनाया के ऊपर पुशअप वाली पोजीशन में था। उसका पूरा वजन उसकी हथेली और पैर पर था और इनाया उसके नीचे थी। दोनों के शरीर के बीच कुछ दूरी थी जिसे कम करने का जिम्मा कायरव ने उठाया और धीरे धीरे इनाया की तरफ झुकने लगा। कायरव का सीना जैसे ही इनाया के सीने से टकराया, इनाया की सांसें तेज चलने लगीं। धड़कनों ने अलग शोर मचाना शुरू कर दिया था। कायरव बार बार ऊपर होता फिर नीचे आता। जब जब उसका बदन इनाया के जिस्म को छूता, उसके अंदर बिजली की तरंगे सी दौड़ जाती। तुम मेरे ऊपर पुशअप क्यों कर रहे हो? इनाया ने बढ़ी धड़कनों के साथ घबराकर उसे देखा। कहा था ना, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और आज मेरा यही एक्सरसाइज करने का मूड है। वैसे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हारा ये हाल है। आगे जो करूँगा उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कायरव के अल्फाजों में शरारत खुली थी। इनाया आंखें बड़ी बड़ी किए कन्फ्यूज सी उसे देखने लगी। क्या मतलब? कायरव जवाब देने की जगह मिस्टीरियस अंदाज में मुस्कुराया, झुका और इनाया के कान के पास जाकर धीमी आवाज में फुसफुसाया। जैसे जैसे वो बोल रहा था, इनाया के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा, चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखर गई और कान जलने लगे। अंदर अजीब अजीब सी हलचल होने लगी। कायरव ने वापस अपनी पोजीशन ली और इस बार वो नॉर्मल पुशअप्स नहीं कर रहा था। जब जब इनाया की तरफ झुकता, उसके नाजुक वजूद पर अपना लम्स छोड़ जाता। कभी उसके भीगे होंठ इनाया के सुर्ख गालों पर फिसलते, कभी उसकी झुकी पलकों पर ठहरते, कभी उसके माथे को प्यार से चूमते, कभी उसकी छोटी सी नाक को छूते, कभी उसके सुर्ख मुलायम होठों को सहलाते। इनाया के चेहरे का एक हिस्सा ऐसा नहीं था जहां कायरव ने अपनी मोहब्बत की छाप ना छोड़ी हो। कभी इनाया छुई मुई के पौधे जैसे खुद में सिमटती, कभी उसकी आगोश में मचलती, कभी अपने वजूद पर फिसलते उसके लम्स को महसूस करते उसकी बाहों में पिघलती। जब जब उसे पकड़ने की कोशिश करती, कायरव उसकी बाहों से फिसलकर उससे दूर हो जाता, उसके दिल को बेचैनियों से भरकर मुस्कुराता। कायरव के सुलगते होठ इनाया की गर्दन पर थिरकने लगे। इनाया ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया और अध खुले होठों से गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कायरव दिलकशी से मुस्कुराया और एक बार फिर उसके दिल में जज्बातों का तूफान उठाकर पीछे हट गया। इनाया ने खफा खफा निगाहों से उसे घूरा। उसकी आंखों में मदहोशी समाई थी। मोहब्बत के नशा का असर कुछ यूं हुआ था कि वो उसमें समाने को तड़प रही थी। उसके यूं घूरने पर कायरव हंस पड़ा। इनाया ने गुस्से में मुंह फुला लिया। कायरव ने बारी बारी उसके गालों को चूमा, थोड़ा दूर होकर कुछ देर गहरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर इनाया के ऊपर झुकता चला गया। उसके होठों ने इनाया के होठों को छुआ। इनाया का बदन अकड़ने लगा। उसने अपनी बाहों में उसकी गर्दन पर लपेटकर उसे अपने और भी करीब कर लिया और उसके होठों को चूमने लगी। यही तो चाहता था कायरव। जब चाहता था इनाया खुद उसके करीब आए, वो ऐसे ही उसे तड़पाता था, उसके दिल को बेकरार करता और अंत में इनाया खुद उनके बीच की दूरियों को मिटा देती थी। अपनी शर्म हया झिझक छोड़कर खुद उसके करीब चली जाती थी। दोनों के होठ एक दूसरे के होठों से उलझे थे, एक दूसरे में ऐसे डूबे थे जैसे सदियों की प्यास बुझाने को बेकरार हों। इनाया के हाथ कायरव की पीठ और गर्दन पर थिसलने लगे। कभी उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझती तो कभी नाखून कायरव की पीठ पर अपने निशान बनाते। कायरव के हाथ इनाया के नाजुक वजूद को अपनी छुअन से महका रहे थे। रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एसी में भी दोनों पसीने से भीग चुके थे। अंदर चाहत की आग जल रही थी जिसने उन्हें बेकाबू कर दिया था। इस पैशनेट रात की सुबह भी उतनी ही हसीन हुई थी। उन्हें मोहब्बत की खुमारी से बाहर निकलने में कुछ वक्त लगा, जिस वजह से थोड़े लेट भी हो गए। दोनों रेडी हुए, साथ में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद कायरव इनाया को होटल ड्रॉप करके खुद ऑफिस चला गया। मानव ने खुद को संभाल लिया था। टूटे दिल का दर्द, अधूरी मोहब्बत की कसक को अपने दिल में दफनाकर फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा था। देखते देखते नित्या को गए एक महीना हो गया। ना वो वापस आई और ना ही उसकी कोई कॉल। अनीता जी एक बार फिर अपने पहले वाले रूटीन की आदी हो गई थी। नित्या की याद आती, लेकिन अब उन्होंने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो जा चुकी है और अब कभी वापस नहीं आएगी। मानव भी काफी हद तक संभल गया था और इन दिनों काफी बिजी रहने लगा था। उसके कैफे का काम जोरों शोरों से चल रहा था और जैसा वो चाहता था ऑलमोस्ट वैसा बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। वो खुद डेली शाम को जाकर वहाँ का काम देखता था और कभी कभी कायरव भी चला जाता था। इनाया अब तक वहाँ नहीं गई थी। वो बेचारी होटल में होने वाले इवेंट्स में इतनी बिजी थी कि उसे किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। कायरव ने उसे जो जिम्मेदारी दी थी उसे वो पूरी ईमानदारी से निभा रही थी, दिल लगाकर हर काम सीख रही थी। डेली उसकी अपडेट कायरव के पास पहुंचती थी और वो उसकी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस था। दोनों कभी रायचंद मेंशन चले जाते तो कभी कायरव के विला में रुक जाते। मेंशन जाने की एकमात्र वजह दादी ही थी। सबकी जिंदगियां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और साथ ही आगे बढ़ रहा था वो होटल जो कायरव ने इनाया के नाम से शुरू किया था। बस कुछ वक्त में वो पूरे राजस्थान में मौजूद होटलों में टॉप 5 में जगह बना चुका था और लगातार आगे ही बढ़ रहा था। इन दिनों सिया अपने मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स में बिजी थी। तेज को सजा हो चुकी थी, सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो ठीक नहीं था, जिसकी जिंदगी एक जगह ठहर कर रह गई थी, वो थी नित्या। घर से भागने की सजा मिली थी उसे। पिछले एक महीने से उसने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। ना उसे कहीं बाहर जाने की परमिशन थी, ना किसी से मिलने या बात करने की इजाजत थी। वो बाहर जा नहीं सकती थी। कोई मिस्टर शेरगिल की परमिशन के बिना उससे मिलने अंदर आ नहीं सकता था। उसके फ्रेंड्स तक से बात नहीं करने दे रहे थे। बेचारी नित्या उस बड़े से मेंशन में कैद होकर रह गई थी। उसके हर मोमेंट पर नजर रखी जा रही थी। रूम में भी उसे जागते हुए अकेला नहीं छोड़ा जाता था। घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। दादाजी ने कई बार मिस्टर शेरगिल से बात भी की, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस ना हुए। नित्या बाहर निकलने के लिए, मानव से मिलने और बात करने के लिए कितना तड़प रही थी, बस वही जानती है। कितनी बार मिस्टर शेरगिल से माफी मांग चुकी थी, उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी थी, पर किसी बात का कोई फायदा ही नहीं हुआ। सुबह का वक्त था, सारी रात नित्या ने जगाकर काटी थी। अब तो उसकी उम्मीद भी टूटने लगी थी। मानव की इतनी याद आ रही थी कि पूरी रात रोती रही, अनीता जी को भी मिस कर रही थी। इस वक्त भी अपनी गोल गोल आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे, गुस्से से मुंह फुलाए वो सीलिंग को घूर रही थी। उसका चेहरा एकदम मुरझा गया था, पहले से वीक लग रही थी। आंखों की चमक, होठों की मुस्कान कहीं खोसी गई थी, चेहरे की रौनक भी गायब थी। सुर्ख रंग में रंगी आंखों में आंसू भरे थे, लबों पर खामोशी, दिल में दर्द, चेहरे पर उदासी और मायूसी छाई थी। उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था, वो नित्या जो मानव के घर में रहती थी वो ये तो बिल्कुल नहीं थी।
पता नहीं एक टक सीलिंग को घूरते हुए वो क्या सोच रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, तब कहीं जाकर उसकी तंद्रा टूटी और करवट लेते हुए उसने अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया ताकि देखने वाले को लगे कि वो सो रही है। अब वो अक्सर ऐसा ही करने लगी थी। अपने आसपास लोगों की मौजूदगी अब उसे घुटन का एहसास करवाती थी। अकेलापन भाने लगा था। कम से कम खुद के सामने अपने जज्बातों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई समझे ना समझे, लेकिन वो तो समझती थी। दुख बस इस बात का था कि कोई और उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। टू बी कंटिन्यूड।